लेकिन फिलहाल आस्था को संभालना ज्यादा जरूरी था। अरमान ने आस्था को बड़े प्यार से होल्ड करके रखा हुआ था। अब आगे आस्था अरमान की बाजू में उसके सीने में इस तरह से छुपी हुई थी मानो कि अगर वो अपना सर बाहर निकालेगी तो कोई ना कोई उसे फिर पकड़ लेगा या फिर पुलिस उसे ले जाएगी। सोचते हुए आस्था अरमान के बेहद क्लोज हो गई थी और अरमान के हारमोनियम सिस्टम भी थोड़े से बिगड़ गए थे क्योंकि आस्था का इतने करीब होना उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर आग में भट्ठे की तरह तपने लगा था। लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किए बैठा था और आस्था को संभाल रहा था। जल्दी ही सिंघानिया मेंशन आ चुका था। सिंघानिया मेंशन आने पर अरमान ने आस्था से कहा, वो मेंशन आ गया है तो क्या वो मेंशन के अंदर जाने के लिए रेडी है? आस्था ने अपनी भीगी पलकें उठाकर अरमान की ओर देखी और अगले ही पल जोरों से उसके गले में अपनी बाहें डाल दीं और बोली, फिलहाल मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था ने अपना सर अरमान के सीने में छुपा लिया था। वहीं अरमान ने अब जल्दी ही एक नज़र टाइगर को देखा और उसे आंखों ही आंखों में इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। वहीं सिंघानिया मेंशन में जोरों जोरों से मेहंदी के फंक्शन की तैयारी होने लगी थी क्योंकि अरमान ने ही आस्था का मूड ठीक करने के लिए मेहंदी के फंक्शन के लिए बोला तो सभी लेडीज काफ़ी ज़्यादा खुश थीं। वहीं नानी माँ भी खुश थीं कि चलो इस काले दिन के बाद धूप तो निकली कम से कम और अब आस्था बेटी का मेहंदी के फंक्शन का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वह सभी अभी हॉल में बैठकर इसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी अचानक सिंघानिया मेंशन में कितने ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे और सभी लेडीज को एक तरफ करके उन्होंने अचानक से पूरी लाइन की सिक्योरिटी सर्कल की दीवार बना दी थी और सभी दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। अब जैसे ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने ये देखा वो सब पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गए थे लेकिन समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई बात है। उन्होंने टाइगर से जानने की कोशिश की थी लेकिन टाइगर उस वक्त खामोश था तो इसीलिए उन्होंने भी इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया था। वहीं राधिका, रौनक, साथ ही साथ रश्मि, नानी माँ, प्रियंका सभी पूरी तरह से चौंक गई थी कि आखिर मामला क्या है, इस तरह से इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड सीडीओ से लेकर यहाँ तक कैसे आ गए। तभी मारिया ने उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे, कोई भी इस तरफ नहीं देखेगा, सबके सब उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब प्रियंका थोड़ा सा चिढ़ गई थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि कोई इस तरफ नहीं देखेगा, सब उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। और कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ दीवार बनकर खड़े हो गए थे। लंबे लंबे, तगड़े, छोटे छोटे सिक्योरिटी गार्ड से लेडीज की तो हाइट वैसे ही कम थी तो वो तो उन्हें उछलकर भी नहीं देख सकती थी। लेकिन फिलहाल राधिका, रश्मि और रौनक तीनों ने ही बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। लेकिन प्रियंका थोड़ी सी टेढ़ी थी, उसे तो जानना था कि आखिरकार मामला क्या है। वहीं आस्था ने एक बार भी अपनी गर्दन बाहर निकालकर नहीं देखा था, उसने तो अरमान के सीने में अपने सर को छुपाया हुआ था और अपनी गर्म सांसें वो वहीं छोड़ रही थी। वो जल्दी ही अरमान अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में से आस्था को गोद में लेकर सीधा सीडीओ से ऊपर जाने लगा था। वहीं उसी पल प्रियंका पलटकर सीडीओ पर से ऊपर जाते हुए अरमान को देख चुकी थी। सिक्योरिटी उनके ठीक पीछे पीछे साथ चल रही थी जिससे जल्दी से किसी की नजर उन पर नहीं पड़ने वाली थी। लेकिन प्रियंका ने नीचे बैठते हुए धीरे से सिक्योरिटी गार्ड्स की टांगों के बीच में से आस्था और अरमान को देख लिया था और मन ही मन में आस्था के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देखकर, इतनी ज्यादा ठाट बाट देखकर वो जलकर कबाब हो गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था के लिए इतना ज्यादा तामझाम भी हो सकता है। एकदम महारानियों वाली फीलिंग उसे दी जा रही थी मानो कि वो कितनी बड़ी हस्ती हो जो उस वक्त किसी को नहीं देखना है और उसे इस तरह से कमरे में लेकर जाया जा रहा था, वो भी मोस्ट हैंडसम इंसान के साथ, अरमान सिंघानिया के साथ। एक बार फिर प्रियंका ने खुद पर ही गुस्सा करते हुए अपने हाथ के नाखूनों को अपने हाथों में काटना शुरू कर दिया था लेकिन तभी उसकी नजर नानी माँ पर पड़ी। नानी माँ को देखते ही प्रियंका ने अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। फ्लैशबैक, सब लोगों के चले जाने के बाद नानी माँ सीधा प्रियंका के कमरे में गई थी और वहां जाकर उन्होंने प्रियंका को अच्छी खासी डांट फटकार लगा दी थी और कह दिया था वो अच्छी तरह से जानती है कि हल्दी के साथ छेड़खानी तूने की है, आखिरकार एक शातिर माँ की शातिर औलाद ही तो पैदा होगी, न एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर इसकी खबर मैंने अरमान सिंघानिया को दे दी तो वो तेरे इतने टुकड़े करेगी कि कोई सोच भी नहीं सकेगी, इसीलिए अब ये छिछोरी हरकत और ये घटिया हरकतें करना बंद कर दे। ऐसा बोलकर नानी माँ ने प्रियंका को अच्छी खासी फटकार लगा दी थी लेकिन प्रियंका फिर भी कुत्ते की दुम थी जो कि टेढ़ी ही रहनी थी। अब इस तरह से अरमान आस्था को एक बार फिर साथ देखकर उसका खून जलने लगा था लेकिन उसने सोच लिया नानी माँ के सामने वो बिल्कुल सीधी साधी बनकर रही थी, अगर उसने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो नानी माँ एक मिनट नहीं लगाएंगी उसे घर से बाहर फेंकने में और प्रियंका किसी भी कीमत पर सिंघानिया मेंशन जैसे महल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। जल्दी ही टाइगर ने आकाश और बाकी सबको बता दिया था कि इस वक्त क्वीन की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए क्वीन उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। जैसे ही क्वीन की हालत थोड़ा बेटर होंगी उसके बाद वो फंक्शन में आ पाएंगी। ऐसा बोलकर टाइगर ने बड़े ही कम शब्दों में सारी बातें उन्हें समझा दी थी। जल्दी ही सभी सिक्योरिटी गार्ड आस्था के कमरे में चले जाने के बाद वापस चले गए थे। तभी नानी माँ की नज़र मारिया पर पड़ती है। वो बोली, अच्छा वो बेटी तू आ गई, मैं तो तुझे फ़ोन ही करवाने वाली थी। आज रात को मेहंदी का फंक्शन होने वाला है, मैंने तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखवा दिया, फटाफट से जो तुम चेंज कर लो। ऐसा बोलकर नानी माँ मारिया को मुस्कुराकर देखने लगी हैं। वहीं टाइगर ने यह सुना तो नानी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना एक्सप्रेशन के बोला, नानी माँ मुझे लगता है कि इस फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मारिया को मेहंदी नहीं लगेगी। अब जैसे ही टाइगर ने यह कहा नानी माँ घूर कर टाइगर को देखने लगी और मन में कोसते हुए बोली, खुद तो घोड़े जैसा इंसान हो रखा है और इस बच्चे का मेहंदी का फंक्शन है, क्यों इसे मेहंदी भी नहीं लगने देना चाहता है। वहीं मारिया को वैसे तो कभी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा करता था, लेकिन टाइगर का इस तरह से रोकना कि मेहंदी नहीं लगेगी उसे थोड़ा अजीब लगा और वो अगले ही पल मारिया टाइगर की ओर देखकर बोली, नानी माँ मैं रेडी होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर मारिया अपने कमरे में चली गई थी। और अब नानी माँ टाइगर को चिढ़ाने लगी थी कि देखा तेरी बात नहीं मानी, वो मेरी बात मानकर तैयार होने गई है। वहीं टाइगर नानी माँ को देखकर हूँ हूँ करके रह गया था और वो भी सीधा मारिया के पीछे पीछे जाने लगा था। दादाजी उस वक्त थोड़ा सा कश्मकश का शिकार थे। हालांकि जब से उन्होंने आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव ने उन्हें ये बताया कि अरमान भाई ने खुद कहा कि मेहंदी के फंक्शन की तैयारी की जाए, तो वो थोड़ा सा बेटर भी फील कर रहे थे। लेकिन अब इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से आस्था को लेकर जाना उन्हें हैरान कर गया था। और जल्दी ही वो उन चारों के साथ स्टडी रूम में मौजूद थे और दादाजी बारी बारी से सबसे पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन उन्हें तो खुद नहीं पता था कि आखिरकार माजरा क्या है, क्योंकि अबीर सिंह राठौर वाली बात वो दादाजी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे दादाजी की सेहत पर फर्क पड़ सकता था। लेकिन टाइगर जैसे ही वहां आया दादाजी ने टाइगर से क्वेश्चन किया, क्योंकि टाइगर 24 घंटे अरमान की परछाई बनकर उसके साथ रहा करता था, इसीलिए टाइगर को कुछ ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था।
अब जैसे ही टाइगर वहां आया दादाजी ने टाइगर की ओर देखकर सवाल किया, क्या हुआ है? टाइगर ने बिल्कुल सपाट चेहरा लिए, जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ था, किस तरह से पुलिस बुलाई गई थी, वो सारी बातें तुरंत दादाजी को बता दी थीं। अब तो जैसे ही दादाजी ने ये सुना वो आगे सोचने पर मजबूर हो गए थे और कहीं ना कहीं मन में उन्हें इस बार की तसल्ली हुई कि चलो अरमान ने उस सिचुएशन में आस्था को संभाला, उसे प्यार किया, ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को इसी तरह से अपने पूरे जिस्म पर चिपकाए हुए लेकर ही बेड पर बैठ गया था और आस्था को कंट्रोल कर रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, आप क्यों डर रही हैं? मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, आपका पति आपके साथ है, मुझे लगता है कि आपको इस तरह से नहीं डरना चाहिए और वैसे भी आपका हबी आपके साथ है। वहीं आस्था मन में सोचने लगी, हाँ हम जानते हैं कि हमारा क्रूएल हबी हमारे साथ है, लेकिन हमें हमारा हबी स्वीट और रोमांटिक ही हमें पसंद है, हमें वो क्रूएल वाला हमें पसंद नहीं है। आस्था भले ही धीरे धीरे मन में सोच रही थी लेकिन अरमान तुरंत बोल पड़ा, मैं इतना भी क्रूएल नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। अब आस्था ने अपने सर पर चपेट लगा दी थी और वो तुरंत अपना छोटा सा सर निकालकर अरमान की ओर देखकर बोली, आखिरकार आपके पास कान्हा जी ने इतने सारे सुपर पावर क्यों दे रखी हैं? आपको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं? तभी अरमान आस्था के बिल्कुल कान के पास जाकर एकदम स्वीट सेडक्टिव वॉइस में बोला, क्योंकि आपका दिल मेरे दिल के अंदर धड़कता है। जैसे ही अरमान ने एक बार फिर से बड़े ही स्वीट टोन में बात की आस्था के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया था। वहीं अरमान आस्था के गले से लगते ही उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया था और उसे याद आया कि अबीर ने बोला कि आस्था उससे डरती है, अरमान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आस्था उससे डरे। उसने डिसीजन ले लिया था, वो आस्था के सामने जितना हो सकेगा उतना नरम बनकर रहेगा और किसी भी कीमत पर आस्था को खुद से दूर नहीं करेगा और ना ही किसी को भी इस बात के कहने का मौका देगा कि आस्था उससे डरती है। आस्था उससे डरती नहीं है, वो उससे प्यार करती है, इस बात को वो साबित कर देगा और अबीर सिंह राठौड़ को मुँह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अरमान सोच रहा था और आस्था की पीठ सहला रहा था। कितनी ही देर तक आस्था अरमान के गले से लगी रही, तब अरमान ने आस्था को थोड़ा सा खुद से अलग करके बोला, आज आपका हल्दी का फंक्शन है, मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाएं। जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल उठता है और चहकते हुए बोली, क्या सच में, क्या आपने वाकई मेहंदी का फंक्शन करने की इजाज़त दे दी है? हमने कल रात भी बोला सबको कि हम मेहंदी का फंक्शन करेंगे लेकिन किसी ने हमारी बात सीरियस ही नहीं ली, लेकिन अब अगर द ग्रेट अरमान सिंघानिया ने बोला है तो मतलब कि फंक्शन होने वाला है, वाओ सो अमेजिंग। ऐसा बोलकर जल्दी ही आस्था ने अरमान को एक बार फिर जोरों से गले से लगाकर उसकी चीक पर एक लाइट किस कर दिया था और अरमान आस्था के इस तरह से किस करने पर मुस्कुरा उठा था। जल्दी ही आस्था अरमान को प्यार करने के बाद तुरंत बाथरूम में घुस गई थी। आस्था के जाने के बाद अरमान का चेहरा एकदम बड़ा ही डेंजर और डार्क हो गया था। अगले ही पल अपने लैपटॉप पर उसके हाथ चलने लगे थे और वो सबसे पहले अमरीश के बारे में पता करना चाहता था कि आखिरकार अमरीश क्या करना चाहता है। और अरमान ने सोच लिया था कि वो अमरीश रायचंद की जान जब तक नहीं लेगा तब तक वो उसके बेटे वीर को तबाह और बर्बाद नहीं कर देता। इसके लिए उसने वीर की जन्म कुंडली निकालने के लिए देव को लगा दिया था और देव ने अपनी सभी खबरों को एक्टिव कर दिया था। साथ ही साथ अबीर सिंह राठौर आगे क्या करने वाला था तो उसके बारे में भी उसने सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए निकलवा ली थी। वहीं आस्था जल्दी ही बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन कलर का फ्लोरल ग्रीन गाउन पहना था। उसमें आस्था तो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि कोई एक ही बार देखने से अपना दिल हार जाए। आस्था के लंबे घने बाल पूरी तरह से खुले थे। अपने हल्के से आज अपने फेस पर लाइट मेकअप अप्लाई किया था, उसी के अकॉर्डिंग कोहनी तक भर भर कर ग्रीन रंग के कॉम्बिनेशन की चूड़ियां डाली थी। हालांकि अरमान आस्था के जाने के बाद वहां से निकल गया था। आस्था जैसे ही तैयार हुई वो फटाफट से अरमान को ढूंढने लगी। वो चाहती थी कि उसे तैयार होने के बाद सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अरमान देखे, तो इसीलिए वो अरमान को चारों तरफ ढूंढने लगी थी। लेकिन जब अरमान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो आस्था थोड़ी सी मायूस हो गई और अगले ही पल मन में बोली, काश सबसे पहले वही हमें देखते। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला तुरंत पीछे से एक आवाज आती है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अब जैसे ही आस्था ने ये आवाज सुनी उसने तुरंत मुड़कर अरमान की ओर देखा। अरमान दरवाजे के पास अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा होकर आस्था को ही देख रहा था।